काफी देर तक जंगल में भटकने के बाद वे जंगल से बाहर निकलकर मेन सड़क पर पहुंच ही गए। तीनों बुरी तरह थक चुके थे और हांफ रहे थे, लेकिन उनके थकान भरे चेहरे पर सुकून था और आंखों में उम्मीद भरी चमक। लेकिन उनके लिए मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। वो सड़क पर तो पहुंच गए, लेकिन आगे कैसे जाएं? अब ये उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी। रात के इस पहर में सड़क पूरी तरह सुनसान थी। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था, ना कोई गाड़ी ना कोई इंसान, बस दूर तक फैली काली सड़क और हल्की हवा की आवाज। इनाया सड़क के किनारे खड़ी होकर गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसका सीना तेजी से उठ गिर रहा था, पसीने से भीगे बाल चेहरे पर चिपक गए थे, उसके पैर अब कांप रहे थे। मानव वहीं सड़क के किनारे बैठ गया, उसने घुटनों पर सिर टिका लिया। अनीता जी भी उसके पास ही बैठ गईं। मनु, आप क्या करेंगे यार, यहां तो दूर दूर तक भी कोई नहीं दिख रहा, कोई गाड़ी भी नहीं आ रही। सुबह से पहले हमें यहां से निकलना है, वरना वो गुंडे हमें ढूंढते हुए यहां तक पहुंच जाएंगे। क्या पता वो भी इसी सड़क से गुजरते हों, ऐसे तो हम फंस जाएंगे। माथे पर बल डाले, आंखों में अजीब सा डर लिए, इनाया परेशान निगाहों से मानव को देख रही थी, जो खुद परेशान था। हम बाहर निकल आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बप्पा ने अब तक हमारा साथ दिया है, उन्होंने हमें यहां तक पहुंचाया है, तो आगे का रास्ता भी वही हमें दिखाएंगे। तो टेंशन मत ले, सुबह होने में अभी वक्त है, उससे पहले हमें यहां से निकलने का कोई ना कोई साधन मिल ही जाएगा। तीनों की उम्मीद पप्पा पर ही टिकी थी। अभी कुछ मिनट ही बीते थे कि दूर से इंजन की भारी आवाज सुनाई दी, पहले हल्की फिर तेज होती हुई। इनाया ने तुरंत सिर उठाया, दूर सड़क पर दो पीली हेडलाइट्स चमक रही थी। थोड़ा करीब आने पर उन्हें समझ आया कि एक ट्रक उनकी तरफ आ रहा था। इनाया के चेहरे पर उम्मीद की चमक फैल गई। मानव, ट्रक, मैं रोकता हूं, लिफ्ट की बात करता हूं, शायद इससे हमें हेल्प मिल जाए। मानव तुरंत उठकर खड़ा हो गया। नहीं, तो अकेला नहीं जाएगा, मैं भी कोशिश करूंगी, लड़की सामने हो तो गाड़ी रुकने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इनाया भी उसके साथ आकर बीच सड़क पर खड़ी हो गई और दोनों हाथ हिलाने लगी। ट्रक की हेडलाइट सब करीब आ गई थी। पहले तो ट्रक वाले ने हॉर्न मारा, लेकिन जब दोनों सामने से नहीं हटे तो आखिर में मजबूरन ट्रक वाले को ब्रेक लगाना पड़ा। फुल स्पीड में आती ट्रक तेज आवाज के साथ उनके काफी करीब आकर रुकी। खिड़की से एक भारी आवाज आई, अरे ओ राम राम। एक 30-35 साल का मूछों वाला सांवला राजस्थानी आदमी खिड़की से झांक रहा था। उसकी मूछें घनी थी, सिर पर लाल साफा बंधा था, जिसका नाम भी रामलाल था। रे मारी माँ, वो बुदबुदाया, रात के टाइम बीच सड़क में कौन खड़ो है? मानव और उसके पीछे पीछे इनाया भी उस ट्रक की खिड़की के पास आने लगी। अंधेरे में ठीक से कुछ नजर नहीं आ रहा था, इलाका ऐसा था कि स्ट्रीट लाइट तक नहीं चल रही थी। उस ट्रक वाले ने टॉर्च चलाया और उसकी रोशनी सीधे मानव से होते हुए इनाया के चेहरे पर पड़ी। वो ड्राइवर जो मानव को कुछ बोलने वाला था, जैसे ही उसकी नजर इनाया पर पड़ी, वो बोलते बोलते रुक गया। उसकी नजर इनाया के चेहरे पर टिक गई। कुछ पल तक वो उसे गौर से देखता रहा, फिर उसने भौंहें से कोड़ ली। अरे, उसने धीरे से कहा, आपने कहीं देखे हो लागे? इनाया और मनु दोनों ही ये सुनकर घबरा गए और एक दूसरे को देखने लगे। रामलाल सिर खुजलाने लगा, रुको, याद आवे लागो है। अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गई। अरे, वो लगभग चौंक पड़ा, आप तो साहब की घरवाली हो ना? इनाया के चेहरे पर उलझन भरे भाव उभर आए। कौन साहब? रामलाल ने तुरंत कहा, अरे कायरव साहब। कायरव का नाम सुनते ही इनाया के चेहरे पर एक अजीब सी नरमी उतर आई। थकी हुई आंखों में जैसे कोई जानी पहचानी रोशनी लौट आई हो। उसके होंठ हल्के से कांपे, आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। रामलाल थोड़ा असमंजस में पड़ गया, लगता है आपने हमें पहचानो नहीं। इनाया ने धीरे से इनकार में सिर हिला दिया, उसकी आवाज अब भी कांप रही थी। रामलाल मुस्कुराया, कोई बात कोनी मदाम, उसने गर्व से कहा, मैं बतावा, आपके होटल में जो लकड़ियों का सारा काम करा वो था ना, फर्नीचर, लकड़ी, सजावट, वो सब ठेका हमने ही लिया था, कायरव साहब ने कॉन्ट्रैक्ट हमें ही दिया था। फिर उसने इनाया को देखा और माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। पर मदाम, आप इस हालत में, इस सुनसान जगह, बात ठीक को नहीं लाग रही? इनाया कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको अभी सब कुछ तो नहीं बता सकती, लेकिन आपकी मदद की जरूरत है हमें। आप कहाँ जा रहे हैं, क्या हमें अपने साथ लेकर जा सकते हैं? इनाया झिझकती हुई बोली। बेचारा रामलाल सोच में पड़ गया। हम तो जयपुर जा रहे हैं, वहां हमारा लकड़ियों का कारखाना है, यहां तो बस माल छोड़ने आए थे, अब घर को लौट रहे हैं। जयपुर? इनाया के होंठ फड़फड़ाए। कुछ पल सोचते हुए उसने आगे कहा, क्या आप अपने साथ हमें भी जयपुर लेकर जा सकते हैं? अरे मदाम जी, जयपुर? साहब तो मुंबई में रह हुए हैं ना, तुम जयपुर क्यों जाना चाहती हो? कोई बात हुई है कि? इनाया ने पलटकर मानव को देखा, आंखों से सवाल किया और उसने अपनी पलकों को झपकाते हुए जवाब भी दे दिया। इनाया ने गहरी सांस छोड़ी, वापस रामलाल की तरफ पलटी जो परेशान निगाहों से उसे ही देख रहा था। मैंने कहा था आपको बहुत लंबी कहानी है जो मैं अभी आपको नहीं बता सकती। आप बस इतना जान लीजिए कि कुछ गुंडे हमारे पीछे पड़े हैं, हम उन्हीं से जान बचाकर भागे हैं। हमारा यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है, मजबूरी ऐसी है कि हम घर नहीं जा सकते। इस वक्त अगर हमें अपनी जान बचानी है तो इन गुंडों की पहुंच से बहुत दूर जाना होगा। अगर हम फिर से उनके हाथ लग गए तो वो हमें जान से मार देंगे। इनाया रुकी और धीरे से आगे कहा, अगर आप हमें जयपुर तक ले जाएं और वहां कुछ समय के लिए छुपने की जगह दिला दें तो हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। बस कैरव के वापस आने तक के लिए हमें ऐसी जगह की जरूरत है जहां ये गुंडे चाहकर भी ना पहुंच सके, उसके बाद सब अपने आप ठीक हो जाएगा। रामलाल तुरंत ट्रक से नीचे कूद पड़े। उन्होंने इनाया और मानव को गौर से देखा, पीछे खड़ी अनीता जी को भी देखा, जैसे तीनों की हालत देखकर उनका दिल बैठ गया हो। फिर उन्होंने राजस्थानी लहजे में गर्मजोशी और फिक्र भरी आवाज में कहा, अरे बाईसा, यो भी कोई कहने की बात है? आप तो साहब की घरवाली हो और मुसीबत में हो, मारो दिल बैठ क्यों सुनके। उन्होंने तुरंत ही ट्रक का दरवाजा तेजी से खोला, आओ चढ़ जाओ ट्रक में, आराम से बैठ जाओ। फिर वो मुस्कुराए, उस मुस्कान में वो देसी भाईचारा था जो राजस्थान की रेत से निकला हो। जब तक रामलाल जीव तो है, कोई आपकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकेगा। राम राम की कसम, मैं आपकी रक्षा करूंगा जैसे मारी अपनी बहन की करता। उनकी आवाज में वो ठहराव और अपनापन था जो दिल से निकला था। उन्होंने मानव की तरफ हाथ बढ़ाया, आओ भाया, आप भी माताजी संग चढ़ जाओ, थक गए होगे, अब चिंता को नहीं करो, जयपुर तक मैं आपके साथ हूँ। राम राम, सब ठीक हो जाएगा। तीनों को बिठाने के बाद उन्होंने ट्रक का दरवाजा बंद किया, खुद घूम कर आए, ड्राइविंग में सीट पर बैठकर इंजन स्टार्ट किया। ट्रक फिर से घर जा और धीरे धीरे अंधेरी सड़क को चीरता हुआ जयपुर की तरफ बढ़ गया। पीछे छूट गया वो खौफनाक जंगल और वो डर जिससे बचकर वो यहां तक पहुंचे थे। अगली सुबह कुछ और गुंडे उस गोडाउन पर पहुंचे। उनके बॉस के फोन का वहां मौजूद गुंडों ने जवाब नहीं दिया था, वो तो पीकर पड़े हुए थे, दुनिया जहां से उन्हें कोई मतलब ही नहीं था। उनका बॉस परेशान हो गया, इसलिए उसने अपने चार विश्वसनीय आदमियों को वहां भेजा। उन गुंडों ने पहले वाले गुंडों को पीकर पड़े देखा तो उन्हें उठाया और ताला खोलकर अंदर आए तो गोडाउन खाली था। वो बुरी तरह चौंके, हर तरफ उन्हें ढूंढा और जब ढूंढते ढूंढते सीढ़ियों के पास पहुंचे तो उन्हें दूसरा झटका लगा। ऊपर का गेट खुला देखकर उनकी भौंहें खतरनाक अंदाज में सिकुड़ गईं। ऊपर आकर जब उन्होंने वहां बंधी रस्सी देखी तो सारा मामला समझते उन्हें देर नहीं लगी। उन्होंने तुरंत ही अपने बॉस को खबर की और उसके ऑर्डर पर जंगल में फैल गए।
बॉस गुस्से से बौखला गया। जब ये खबर मिस्टर रायचंद तक पहुंची तो वो उसी पर भड़क उठे। तभी से वो गुंडा अपने आदमियों के साथ उन तीनों को ढूंढ रहा है, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी अब तक उसे उनकी कोई खबर नहीं मिली और मिस्टर रायचंद भी कुछ नहीं कर सके। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, हल्की फुल्की राजस्थानी लिखने की कोशिश की है जबकि आती नहीं, इसलिए अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो तो माफ करना।